हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम जयो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जयो राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय श्री गौर निताय की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणा रघुनाथाम्बितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखानिताश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्तदेशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च वदितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम्
नासाग्रे नवमोक्तिकं करतले वेडुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुवलितं कंठे च मोक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ये प्रीति भोज का कार्यक्रम जो रखा हुआ है प्रत्येक स्क्वायर में, जहाँ पे एटलीस्ट संडे के दिन, छुट्टी के दिन पे सारे भक्त लोग एक साथ में एकत्रित होकर भगवान के नाम कीर्तन कथा को श्रवण करते हैं, और यही पोषणता प्राप्त करके उनका पूरा हफ्ते चलता है जो कि नौकरी धंधे वाले सब लोग हैं। तो स्वागत है सभी का। तो बहुत सुंदर महीना चल रहा है। कौन सा महीना है? कार्तिक महीना, दामोदर मास। तो सभी इस महीने से परिचित हैं, क्योंकि साल में टोटल कितने महीने होते हैं? 13-12, ठीक है। तो साल में जो 12 महीने होते हैं उसमें से दो महीना परम पवित्र माना गया है। एक है सावन का महीना और दूसरा कार्तिक का महीना। बहुत प्रिय है भगवान को। अगर इस महीने में कोई भी भक्ति के क्रियाकलाप कोई करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है। और विशेषतः ये जो महीना है कार्तिक, यह तो इसके जो अधिष्ठाता देवी हैं कौन है? श्रीमती राधा रानी हैं। तो इस महीने में अगर हम भक्ति के क्रियाकलापों को करते हैं तो श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करते हैं, हम उनके भाजन बन जाते हैं। और भगवान को इसलिए भी यह महीना बहुत प्रिय है क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी को प्रिय है। तो बहुत ही पवित्र महीना कार्तिक महीना। इस कार्तिक मंथ के विषय में मैं अगर कहूं तो पद्म पुराण में एक कथा का वर्णन आता है कि एक बार की घटना है कि द्वारका की लीला है। द्वारका के समय जब भगवान उपस्थित थे तो उस समय द्वारका में भगवान की एक पटरानी जिसका नाम है सत्यभामा, उसने भगवान कृष्ण को पूछा, भगवान कृष्ण को पूछा कि प्रभु मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न है, कृपया उस प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए। तो सत्यभामा ने जब इस प्रश्न को पूछा, कृष्ण को प्रश्न पूछा, प्रश्न क्या है? सत्यभामा बोलती है कि प्रभु मैंने अपने जीवन में क्या ऐसा कार्य किया, पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या कार्य किया जो कि आपका शाश्वत रूप से आपकी पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, कृपया इस बात को मुझे बताइए। क्योंकि भगवान का पत्नी बनना मतलब कितनी सौभाग्य वाली बात है। वह भगवान जो कि शाश्वत हैं, उनकी पटरानी बनना मतलब कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इस बात को जानना चाहते कौन? सत्यभामा, कि आप बताइए कि मैं कौन सा ऐसा कार्य किया था पिछले जन्म में जिसके कारण मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान स्वयं कहते हैं सत्यभामा को कि हे सत्यभामा, तुमने पिछले जन्म में सुंदर रूप से कार्तिक व्रत का पालन किया था, तुमने कार्तिक व्रत का पालन किया था और साथ साथ में कार्तिक व्रत करते करते तुमने दामोदर अष्टकम का पाठ किया और पूरे महीने भर दामोदर को तुमने दीप दान को अर्पण किया, और यही एक रीजन है जो कि तुमको मेरे धाम में या मेरे पटरानी के रूप में प्राप्त हुआ अगला जीवन। तो वास्तव में जो कथा का है बहुत लंबा वर्णन है पद्म पुराण में कि किस प्रकार से कि ये जो सत्यभामा थी ये पिछले जन्म में एक गुणवती नाम की एक कन्या थी, बहुत गुण थे उसके अंदर, और इसके पिता का नाम था देव शर्मा। इसके पिता का क्या नाम था? देव शर्मा। तो ये गुणवती कन्या जो थी बहुत ही गुणवान थी, इसलिए उनके पिता ने इनका नाम रखा था गुणवती। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ये कन्या बड़ी हुई, बड़ी होने के पश्चात जब उसका विवाह करने का समय आया तो उस समय कोई योग्य वर प्राप्त नहीं हो पा रहा था, कोई वर उनको योग्य वर प्राप्त नहीं हो रहा था क्योंकि इसके अंदर गुण थे बहुत। तो देव शर्मा ढूंढने लगे कि ऐसा कोई योग्य वर मिले, और उन्होंने देखा कि कहीं नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उनके ही शिष्य देव शर्मा जो कि ब्राह्मण थे, उनके ही एक शिष्य जिसके अंदर कुछ गुणों को उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही शिष्य के साथ अपनी पुत्री इस गुणवती कन्या का विवाह संपन्न कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात एक गुरु और शिष्य या फिर ससुर और दामाद जो अभी बन गए, नदी स्नान करने गए और कुछ दुर्घटनावश दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है और एक गुणवती कन्या बहुत अकेले पड़ जाती है और कोई नहीं घर में। तो उसने सोचा कि अभी मैं किसके लिए जीऊं, इसलिए उसने क्या किया, उसके पास जितनी भी धन संपत्ति था वो सब धन संपत्ति को दान में दे दिया और स्वयं एक झोपड़ी बनाकर रहकर वह भजन करने लगी। जीवन पर्यंत उसने भजन किया और विशेषतः इस कार्तिक व्रत का पालन किया उसने, और भगवान दामोदर को दीप दान अर्पण किया, और इस तरह से वो सत्यभामी जो सत्य गुणवती नाम की कन्या जो है भगवान की शाश्वत पत्नी सत्यभामा के रूप में उसका अगला जीवन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इस कार्तिक महीनों के अगर महिमा देखे तो बहुत सुंदर इस कार्तिक मंथ के ऊपर बहुत सुंदर कथा हो सकता है, लेकिन खैर हम संक्षिप्त रूप में से ये बताया कि किस प्रकार से कार्तिक महीने की जो महिमा है आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए सभी लोग बहुत ही तीव्र गति से इस मंथ को, इस व्रत को पालन करने में सब लोग लगे हुए हैं। तो आइए हम इस कार्तिक महीने में भगवान ने विशेष लीला कौन सा किया, दामोदर लीला किया। वैसे इस कार्तिक में अनेकों भगवान की लीला हुई है, अनेकों लीला हुई है, लेकिन विशेषतः जो भक्त लोग याद करके आनंद लेते हो कौन सी लीला है, दामोदर लीला। तो मैं कल शाम को किसी और कार्य से आया था तो दयामूर्ति प्रभु ने बोला कि कल क्लास दीजिए आप, तो मैं तो निकलने वाला था लेकिन उन्होंने क्लास दे दिया, तो कोई रुकने का प्लान तो था नहीं, तो मैं बोला नहीं कोई प्लान नहीं है, तो बोले नहीं नहीं क्लास देख के जाओ, इसलिए देखो सुबह सुबह ये सारा चीज़ नया भी दिया उन्होंने, धोती दिया, कुर्ता दिया नया, बोला क्लास दो क्योंकि मैं रुकने के प्लानिंग से नहीं आया था। तो मैं सोच रहा, उन्होंने बोला कि कार्तिक महीना चल रहा है और लगभग प्रथम संडे है, आप थोड़ा कार्तिक के विषय में बताओ, दामोदर लीला के विषय में बताओ। मैंने सोचा कि दामोदर लीला तो हर एक भक्त लोग गाते ही रहते हैं, हमेशा गाते रहते हैं, रोज गाते हैं, याद भी हो चुका है अष्टकम, दीप दान भी रोज करते हैं, केवल मंदिर में नहीं घर में भी करते हैं, सुबह शाम करते हैं। तो दामोदर लीला अगर लूंगा तो हो सकता है कि पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन तत्पश्चात पुनः मेरे मन में सनातन गोस्वामी पाद का एक बात याद आया। सनातन गोस्वामी पाद इस जो दामोदर अष्टकम जो है उसके टीका में लिखते हैं सनातन गोस्वामी पाद कि ये जो दामोदर लीला है ना, ये जो है वैष्णव जगत में बहुत विख्यात है। अगर कोई वैष्णव, कोई भक्त, उच्च कोटि का भी भक्त अगर इस लीला का गायन शुरू करता है तो कई घंटों घंटों दिन भर इसमें निकाल देता है इस लीला का गायन करने में, क्योंकि ये वैष्णव जगत में परम प्रसिद्ध और बहुत प्रिय लीला है, बहुत ही प्रिय लीला है। कभी कभी तो कोई भक्त पूरा जीवन इस लीला का स्मरण करने में निकाल देते हैं अपना। सनातन गोस्वामी पाद बहुत सुंदर से टीका लिखते हैं, तो मैं सोचा कि इस प्रकार की सोचना मेरा मूर्खता है कि मैं सब लोग जानते हैं तो फिर से क्यों स्मरण कराऊं, मतलब भले से जानते हो लेकिन सनातन गोस्वामी पाद की इस बात को सोचते हुए मैंने बोला कि नहीं, इसी लीला को दोहराते, कार्तिक चल रहा है इसी लीला का स्मरण करते हैं, कोई अलग नहीं। तो इस प्रकार से देखिए ये लीला इसलिए भी महत्वपूर्ण है और सब भक्त लोग इसलिए इस लीला का स्मरण करते हैं क्योंकि इस लीला में क्या हुआ है, आप देखिए बहुत सोचने वाली बात है कि इस लीला में हुआ क्या है। यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को बांधा, कृष्ण को रस्सी से बांधा, और हमारे भी जीवन का यही लक्ष्य है कि हम कृष्ण को बांधना चाह रहे हैं, इसलिए जो वैष्णव जो भक्त है ना, उच्च कोटि के भक्त है ना, इसलिए इस लीला का स्मरण गायन कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का भी उद्देश्य क्या है, सुबह मंगल आरती से लेकर रात तक, संध्या तक, शयन तक, हम जितने भी भक्ति के क्रियाकलाप करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण को बांधना, कृष्ण को आकर्षित करना। तो इसलिए हम इस लीला का जितना ज्यादा श्रवण कीर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से यशोदा मैया ने कृष्ण को बाधा, उसी प्रकार हम कृष्ण से भी प्रेम कर सकते हैं, उनको बांध सकते हैं। तो आइए हम इस लीला को स्मरण करते हैं। देखिए, कृष्ण को बांध पाना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कृष्ण को बांध पाना, क्योंकि कृष्ण बहुत चंचल हैं, बहुत ही चंचल स्वभाव के कृष्ण हैं। इसी श्लोक में जो अभी आपके सामने श्लोक लिखा गया, उसके दूसरे लाइन का पहला शब्द देखिए, लसत कुंडलम। कृष्ण इतने चंचल है कि उनको कोई बांध नहीं सकता, इतने चंचल है कि वहां पर सत्रवत मुनि ने लसत कुंडलम की बात कही है। लसत कुंडलम मतलब, तो कहते हैं कि कृष्ण की शोभा कैसा है तो वहां बताते हैं लसत कुंडलम, उनके कानों में कुंडल है, वो कुंडल पहने हुए है, तो कुंडल कैसा है तो कहते हैं वो लसत, हाँ पेंडुलम होता है ना लसत, हाँ कुंडलम, वो कुंडल क्या हो रहा है, इससे आप पता कर सकते हैं कि कृष्ण कितने चंचल है। वो लीला को स्मरण करते हुए कह रहा है कि लसत कुंडल, कुंडल जो है कंटिन्यू हिल रहा है उनके कान में, मतलब बहुत ही चंचल है कृष्ण, उनको बांध पाना जो कि बहुत ही मुश्किल है। एक आचार्य कहते हैं कि कृष्ण जो है, भगवान जो है टेढ़े ठाकुर है, टेढ़े स्वभाव के हैं, है ना, कृष्ण बहुत टेढ़े स्वभाव के हैं। कहते हैं कि देखिए, उनकी जो दृष्टि है ना, बहुत ही टेढ़ी दृष्टि है। कोई अगर उनको बुलाता है कि मान लो मैया बुलाते कृष्ण इधर आओ, तो कृष्ण मान लो मैया इधर से बुलाती तो इधर देखते हैं, और इधर देखते हुए फिर ऐसा देखते हैं, मतलब वो देखते हैं तो भी टेढ़े देखते हैं, टेढ़े स्वभाव के हैं। भगवान राम तो बहुत सीधे स्वभाव के थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कृष्ण जो है ना, उनका स्वभाव बहुत ही टेढ़ा है। भगवान राम के पास उनकी सुंदरता को आकर्षित होकर कौन उनके पास आई थी, सुपुर्णिका आई थी, सुंदरता को आकर्षित होकर सुपुर्णिका उनके पास आई और बोले कि प्रपोज किया कि प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, शरम धर्म त्याग के प्रपोज, सीधा प्रपोज किया। अच्छा थोड़ी नहीं लगता है एक पुत्री, एक लड़की किसी डायरेक्ट जाकर किसी लड़के को अप्रोच करे, सभ्यता थोड़ी ना है, अरे माँ बाप जाके अप्रोच करना चाहिए उनके घर वालों को। लेकिन सुपुर्णिका से परंपरा शुरू हुआ था, आज भी चल रहा है। तो सुपुर्णिका ने प्रभु राम को क्या बोला, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु राम ने बोला कि क्षमा करिए, एक पत्नी, एक बाण और एक वचनधारी हूं मैं, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं। एक काम करो, हाँ लक्ष्मण अकेला है इसमें, लक्ष्मण अकेला है, ये वनवास समय की बात है, लक्ष्मण अकेला है, तुम उसके पास जाओ। तो लक्ष्मण के पास गई सुपुर्णिका, लक्ष्मण के पास जाकर वही प्रपोजल दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो लक्ष्मण तो बड़े प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छी बात, आओ आओ। लेकिन एक बात है ध्यान में रखना कि देखो, मैं जो है ना राम का दास हूं, मैं दिन रात केवल राम की सेवा करते रहता हूं, तो तुम अगर मेरे से शादी करेगे तो तुमको दासी बनकर रहना पड़ेगा। अगर तुमको कबूल है तो बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूं, दिन रात केवल राम की सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी दिन रात केवल प्रभु राम की सेवा करता हूं। लक्ष्मण सोते तक भी नहीं थे, रात्रि के समय भी लक्ष्मण नहीं सोते थे, और यही बात सुपुर्णिका को बताया कि दासी के रूप में अगर सेवा करना है तो बताओ, मैं शादी कर लेता हूं। नहीं, मैं दासी थोड़ी ना बनने के लिए आया हूं, तो मैं महारानी बनने के लिए आई हूं। तो बोले ठीक है, वो उधर जाओ, क्योंकि वो राजा है, उनकी पत्नी बनोगे तो महारानी की तरह जियोगी। वापस गए राम के पास, वापस लक्ष्मण के पास भेजे, बिल्कुल एकदम फुटबॉल की तरह इधर से उधर, उधर से उधर, ठुकराते गए, ठुकराते गए, यहां तक कि उसके नाक को काटकर भी भेज दिया, लेकिन स्वीकार नहीं किए प्रभु राम। मैं वही सोच रहा था कि इस लीला का जब श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो राम वो गलत जगह पे गई, राम के पास जाना ही नहीं चाहिए था, उसको कृष्ण के पास आना चाहिए था। कृष्ण के पास आते तो वो बोलते कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे कोई बहन हो उसको भी लेके आ जाओ, तुम्हारे कोई सखी हो उसको भी लेके आ जाओ, सबको लेके आ जाओ, मैं थोड़ी ना मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। तो कृष्ण जो है ना टेढ़े ठाकुर है, आचार्य कहते हैं बहुत टेढ़े ठाकुर, उनकी दृष्टि भी बहुत टेढ़ी है, यहां तक कि वो खड़ा होते तो भी टेढ़े होते, देख लीजिए टेढ़े ही खड़ा है, खड़े होते हैं तो भी टेढ़े रहते हैं, यहां तक कि वो बोलते हैं ना तो भी टेढ़ा ही बोलते हैं, बोलना भी उनका टेढ़ा होता है। एक बार की घटना है कि श्रीमती राधा रानी बहुत सज धज के सुंदर होकर उनके सामने प्रकट हुई आई और बोले कि मैं कितने सुंदर दिख रही हूं। पूछती है राधा रानी कृष्ण से कि कितनी सुंदर, उनको बोल देना चाहिए बहुत सुंदर दिख रहे हो, लेकिन ऐसा तो बोलना है नहीं, सीधा तो है नहीं, हमेशा टेढ़ा ही बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कि हे राधे मैं क्या बताऊं तुमको, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यहां तक कि वो उपमा देने लगे चंद्रमा की उपमा देने के लिए कि तुम्हारे जो मुख कमल हो चंद्रमा के समान है, बिंदी चंद्रमा के समान है, चंद्रमा की उपमा देते गए यहां तक कि तुम्हारे हजारों हजारों चंद्रमा तुम्हारे अंदर समाहित है। और इस प्रकार से जैसे ही चंद्रमा 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 बार बार कहने लगे राधा रानी रुष्ट हो गई, ये जरूर चंद्रावली को मिल के आया होगा। तो इस प्रकार से बोलते भी तो बहुत टेढ़ा बोलते हैं, चलना भी टेढ़ा होता है, चलते भी है ना, वो सीधे थोड़े ना चढ़ते हैं, टेढ़े ही चलते हैं ना। कथा गानम नाट्यम गगनम अपी, सालों साल अपने गर्भगृह में बैठे रहते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा होता है तो बाहर निकलते हैं, और आपने देखा है जब भी वो बाहर निकलते हैं तो किस प्रकार से चलते हुए रथ पे जाते हैं, एकदम टेढ़े है, उनके पास हट्टे कट्टे ही लोग रहते हैं, हट्टे कट्टे लोग, वो तो पतले लोग तो दूर ही से देखते हैं, दूर से देखते हैं, कुछ भी हो नीचे आ जाएंगे उसके, है इतना टेढ़ा मेढ़ा करते 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 घंटों में वो कहां पहुंचते हैं, रथ के ऊपर, है ना, चलते भी तो टेढ़े ही चलते हैं। यहां तक कि वो जिस नदी में स्नान करते हैं यमुना, वो भी टेढ़ी बहती है, देखिए कितनी टेढ़ी है यमुना, टेढ़ी ही रहती है। यहां तक कि जिस ब्रज में वो चलते हैं ना, वो ब्रज की गलियां भी टेढ़ी है, कितना टेढ़ी मेढ़ी गली है किसी को याद ही नहीं होता है जल्दी, किसी को याद नहीं होता, सीधी सीधी रहता था आराम से, आंख गाड़ी मोटर लेके जाते दर्शन वर्शन करके आते हैं, इतनी टेढ़ी मेढ़ी गली भी है। तो इस प्रकार से वो आचार्य कहते हैं कि उनकी दृष्टि टेढ़ी, उनका खड़ा होना टेढ़ा, बोलते हैं तो भी टेढ़ा ही बोलते, चलना भी टेढ़ा, यमुना भी टेढ़ी, यहां तक कि ब्रज की गली टेढ़ी। और वो आचार्य तो यह भी कहते हैं कि ऐसे कृष्ण की जो भक्ति करने वाले उनके भक्त है ना वो भी, अरे मैं नहीं बोल रहा हूं आपने बोला है। तो आचार्य बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण के विषय में वर्णन करते हैं कि ऐसे ठाकुर है, इतने टेढ़े ठाकुर है, लेकिन फिर भी आज क्या हुआ, वो बंध गए हैं माता, जो किसी के बंधन में नहीं आने वाले, लेकिन आज माता यशोदा के द्वारा वो बंध गए हैं, इसलिए उनको बांधने के लिए, ऐसे टेढ़े ठाकुर को बांधने के लिए भक्त लोग बार बार इस लीला का स्मरण करते हैं, बार बार इसका गायन करते हैं। तो इस प्रकार से कौन बांध सकता है भगवान को, कोई बांध सकता है भगवान को, कोई नहीं बांध सकता भगवान को। दुर्योधन बांधने का प्रयास किया था, बांध दो इस ग्वाले को, कहां बांध पाया, भगवान ने बोला कि जिसका आदि अंत हो उसको बांधा जा सकता है, जैसे ये टेबल है ना, इसका आदि अंत है, वहां से शुरू होता है यहां खत्म होता है, भगवान जिसका आदि अंत है ही नहीं उसको कौन बांध सकता है, कोई बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता है। दुर्योधन ने बांधने का प्रयास किया लेकिन नहीं बांध पाया। तो लेकिन ये दामोदर लीला से भगवान बंध गए हैं, और हम निश्चित रूप से इस लीला का स्मरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, उनको बांधने का जो प्रयास है हमारा उसमें सफल होने की संभावना है। तो आइए हम इस लीला को संक्षिप्त रूप में, आप लोग लीला को जानते हैं अच्छे से, लेकिन आज हम थोड़ा सा शिक्षा लेते हुए इस लीला को श्रवण कीर्तन करेंगे। तो कृष्ण जब इस ब्रज में सबसे पहले जब चलना शुरू किए तो क्या किए पहले बताए, कृष्ण ब्रज में जब चलना शुरू किए तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना शुरू किया, चोरी करना प्रारंभ किया। चलना जैसे ही सीखा तो पहले चोरी करना प्रारंभ किया उन्होंने, चोरी करना प्रारंभ किया। देखिए जब ये कृष्ण चलना प्रारंभ किया उस समय मक्खन को चोरी करते हैं, मक्खन को लेकर, मक्खन का गोला हाथ में लेकर कृष्ण चुपके से जा रहे हैं। उस समय क्या होता है, उस नंद भवन में 84 खंभा नंद भवन में कृष्ण तुरंत ही एक बालक को देखते हैं सामने। कृष्ण बालक को देखते हैं तो तुरंत ही, क्योंकि चोरी करके आ रहे हैं, मक्खन चोरी करके आ रहे हैं, जैसे ही उस बालक को देखते हैं कृष्ण क्या होते हैं, तुरंत डर जाते हैं, हाथ में मक्खन का गोला है लिए हुए, डर जाते हैं तो तुरंत उसको मनाने लगते हैं, देखो एकदम चुप रहना, बोलना मत, चुप रहना एकदम, किसी को बोलना मत, किसी को मत बोलना, यहां तक कि मैया को भी मत बोलना तुम, एक काम करो, तुम अपना मुख बंद करने के लिए एक काम करो, मैं इसमें से आधा तुमको देता हूं मक्खन, आधा मक्खन तुमको देता हूं, लेकिन किसी को बोलना मत। फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहा है तो बोलता है कि एक काम करो तुम पूरा मक्खन ले लो लेकिन मत बोलना किसी को। फिर भी नहीं बोला तो कृष्ण बहुत मना रहे फिर भी नहीं बोल रहा है तो गुस्सा क्रोध में आ गए, बोले जा जिसको बताना जाके बता दे। वो कुछ और नहीं था, उस खंबे में एक कांच लगा हुआ था, वो अपने ही प्रतिबिंब को देख के इस प्रकार के बात कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्य वाली बात क्या है पता है, मैया किसी और खंबे के पास खड़े होकर देख रही है, देख रहे हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर बात कर रहे हैं। कृष्ण ने पहला चोरी करना प्रारंभ किया। देखिए पराशर मुनि जब ही भगवान के छह ऐश्वर्यों की बात करते हैं ना, भगवान शब्द की परिभाषा जब पराशर मुनि देते हैं वेदव्यास जी के पिताजी, तो उस समय क्या कहते हैं, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, जो छह ऐश्वर्यों से पूर्ण हो, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य, ये सारे छह ऐश्वर्य जो कि पूर्ण मात्रा में जिसके अंदर हो कौन है, भगवान है। तो उसमें एक आता है कि यशस्वी, यशस्वान होना, पूर्ण रूप से यशस्वी होना। इस संसार में हम यश प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। इस संसार में अगर यश को प्राप्त करना है व्यक्ति को तो क्या करता है, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करता है। बुरे कार्य करने से यश मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे कार्य करता है व्यक्ति, लेकिन भगवान जो कि पूर्ण यशस्वान यशस्वी है, पूर्ण यशस्वी है भगवान, वो भगवान यश पूर्ण यश को प्राप्त चोरी करके भी करते हैं। सोचिए कि 5000 वर्ष पहले उन्होंने चोरी किया और उस चोरी की घटना को आज भी भक्त लोग गाते हैं और नाचते हैं गागा के। हम चोरी करते तो क्या होता, मारे जाते, लेकिन भगवान ने चोरी किया तो क्या हुआ, उनके कथा का गायन कीर्तन हो रहा है, उनको याद किया जा रहा है। यह है भगवान का यशस्वान होना, यशस्वी हो, गलत भी कार्य करते हैं तो यशस्वी हो जाते हैं, ये है यशवान। तो इस प्रकार से गोपियां जो है मां के पास कंप्लेन लेके आती थी, सारी गोपियां मां के पास कंप्लेन आकर कहती थी कि मैया ये तुम्हारा जो लाला है ना बहुत परेशान करता है, हमें बहुत परेशान करता है, क्योंकि हमारे घर के अंदर दूध दही मटके इत्यादि सब फोड़ फाड़ करता है और चोरी करता है, इसको तुम संभालो। तो मैया कभी विश्वास नहीं करते थे क्योंकि उसके घर में कमी है क्या, नंद भवन में नंद महाराज के पास 900,000 गाय है, उसको क्या कमी है। तो मैया विश्वास नहीं करती थी। एक दिन की घटना है कि गोपियों ने क्या किया, कृष्ण को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और एक गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, बस अभी लेके चलो, मैया के पास लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार से चोरी कर रहा है, किस प्रकार से चोरी, रंगे हाथ पकड़े थे और पकड़कर खींचकर मैया के पास लेके जाने लगे। अभी क्या हुआ, लेके जा रहे थे रास्ते में, तभी वहां का रास्ते में एक सर्कल एक जंक्शन पड़ा, तो वहां पे उस गोपी के ससुर जी दिखाई दिए। तो गोपी के ससुर जी दिखाई दिए तो गोपी मर्यादा वाली गोपी थी, तुरंत उसने क्या किया, ससुर जी दिखाई दिए तो उसने लज्जावश क्या किया, कृष्ण को एक सेकंड के लिए छोड़ा और अपने घूंघट को नीचे किया, एक सेकंड के लिए छोड़ा कृष्ण को, घूंघट को नीचे किया, वापस पकड़ा। लेकिन वापस जब पकड़ने गई तो कृष्ण ने क्या किया, उसके ही पुत्र को उसके हाथों में पकड़ा दिया। गोपी को पता नहीं है, कृष्ण ने उसके पुत्र को उसके हाथ में दे दिया। अब खींच के वो बालक तो पुत्र चिल्ला रहा है कुछ, लेकिन सुन कहां रही है, नहीं मां सुन नहीं रखी, खींच के बस मैया को दिखाना है कि तेरा बालक कितना चोरी करता है। खींच के लेके गई नंद भवन में, नंद भवन में खींच के लेके गई, दरवाजा खटखटाया, बेल बजाया, मैया ने दरवाजा खोला और जैसे ही मैया ने दरवाजा खोला तो इस गोपी का नजर पहले कृष्ण के ऊपर पड़ा, सामने कृष्ण भी थे, बोले कि कृष्ण मैं तो पकड़ के लेके आ रही, इसको जैसे ही देखे कह रहे ये तो मेरा ही चिंटू है। उस समय भगवान ने बोला कि आज तो तुमने मुझे पकड़ा, आज तो मैंने तेरे पुत्र तेरे बालक को तेरे हाथ में दिया, नेक्स्ट बार ऐसा किया ना तेरे पति को हाथ में पकड़ाऊंगा। तो इस प्रकार से मैया बहुत कंप्लेन, मैया के पास बहुत कंप्लेन आते थे कि ये घर में इस प्रकार से करता है। और सारी गोपियां एक्चुअली इस बात को, इस घटना, इस सारे कंप्लेन को ना सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं सारे कंप्लेन को, कि सारी गोपियां एकत्रित होकर मैया के पास जाती है, मैया ये तेरा जो लाला है ना बहुत ही बदमाश है, हम लोग का जीना हराम कर दिया है, बिल्कुल जीना हराम कर दिया है। तो माता यशोदा पूछते क्या किया इसने, मेरा लाला ने क्या किया, मैया ने पूछा मेरे लाला ने क्या किया, बोलती है गोपिया मैया क्या किया क्या नहीं किया ये पूछो, क्या किया वो छोड़ो क्या नहीं किया इसने, इस प्रकार से कंप्लेन करें तो क्या किया बताओ तुम लोग। तो गोपियां बोलती हैं कि ये आता है और क्या करता है कि समय समय अभी हुआ नहीं है और बछड़ों को छोड़ देता है गायों के पास पीने के लिए, समय नहीं हुआ है छोड़ने का, दूध पीने का समय नहीं हुआ, दूध निकालने का समय नहीं हुआ है, बछड़ों को छोड़ देता है वो दूध पी जाते हैं पूरा, हम जब निकालने जाते हैं तो दूध रहता ही नहीं थन में, वो पूरा पी जाते हैं। तो मैया बोलती है कि काम करो तुम लोग को डांटना चाहिए ना, डांटना चाहिए क्यों ऐसा कर रहा है। तो बोलते कि मैया हम लोग डांटते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डांटते हैं, हम डांटते हैं लेकिन जब डांटते तो बता है क्या बोलता है, बोलता है कि तुम लोग जो ना कसाई हो कसाई, इतना पतला है बछड़ा देखो इतना पतला सा मरने वाला, अभी दूध नहीं पिलाते हो तुम लोग, दूध सब निकाल लेते हो तुम लोग, कसाई हो कसाई। भैया इस प्रकार से वो गाली देता है। और जब हम बछड़ों को बांधने के लिए जब जाते हैं, वो छोड़ दिया अभी, हम बछड़ों को जब बांधने के लिए जाते हैं तो क्या करता है अपने मित्रों के साथ घर में घुस जाता है, अभी अपने मित्रों के साथ घर में घुसा और घर में घुस कर क्या, घर में क्यों घुसता है, तुम्हारे घर में क्यों घुसता है, इतना बड़ा मेरा महल है, मैया बोलती मेरा महल इतना बड़ा है तुम्हारे घर में क्यों घुसेगा। मैया घर में घुसता है और क्या करता है वो मटकी मक्खन जितने भी पड़े रहते सब तोड़ फोड़ कर देता है। तो मैया बोलती कि मेरे 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 घर में माखन की कमी है क्या, तुम्हारे घर में जाएगा तोड़फोड़ करने के लिए। बोलती मैया वो तोड़ता तो तोड़ता है, वो क्या करता है मित्रों को बांटता है, सब बिखेर देता है और यहां तक कि बंदरों को खिलाता है। मान लो मैया कहते कि तुम एक काम करो कि तुम्हारे मक्खन को ना वो ऊपर बांध दो, मटके में लगा के ऊपर लटका दो। बोले मैया वो भी हमने किया है, वो क्या करता है 10-20 को नीचे खड़ा करता है, उसके ऊपर 10 उसके ऊपर 5 ऐसा करके वो सबसे ऊपर तेरा लाला और फोड़ता है उधर। एक काम करो तुम लोग अंधेरे में रखो, अंधेरे में रखोगे तो उसको मिलेगा ही नहीं, अंधेरे में। मैया हमने ये भी करके देख लिया लेकिन तुमने जो आभूषण इसके ऊपर लगाया हुआ है ना, ये आभूषण जहां पे भी जाता है ना वो अंधेरा दूर हो जाता है और ये देख लेता और पकड़ लेता है। तीस प्रकार से मैया को वह तो गोपियां कहती कि मैया ये खुद खाता तो हम लोग को कोई समस्या नहीं था, तेरा छोटा सा बालक है छोटा सा पेट है कितना मक्खन खाएगा, खुद खाता कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये क्या करता है चलो मित्रों को खिलाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे ही ब्रजवासी हमारे ही सहेलियों के पुत्र हैं सभी, थोड़ा खा ले तो कोई समस्या नहीं, लेकिन मैया क्या करता है सबको इकट्ठा करता है, बंदरों को पूरा का पूरा सब खिलाकर खत्म कर देता है और बिखार के चला जाता है, बिगाड़ देता है पूरा। तो भगवान बंदरों को भी मक्खन खिलाते थे, आज सोचिए आज के समय में लोगों को छाछ दुर्लभ हो गया है लेकिन भगवान बंदरों को मक्खन खिलाते थे मक्खन। पिछले लीला में जब राम अवतार में यही बंदरों ने बहुत उनको मदद किया था, इसलिए भगवान आज उसका स्मरण करके कि बहुत मदद किया था ना, आज सबको पूर्ति कर रहे हैं इस मक्खन को खिला खिला के, सेवा तुम लोगों ने बहुत सेवा किया था। और वास्तव में जो हनुमान महाराज और इस प्रकार से सारे बानर सेना ना भगवान के लीला में कितनी अहम भूमिका निभाए आप सभी लोग जानते हैं, कितनी अहम भूमिका निभाया, ऐसे ऐसे कार्य किया इन भक्तों ने, बानर सेना ने ऐसे ऐसे कार्य किया कि भगवान भी ऐसे कार्य नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे कार्य किया इन भक्तों ने। हम देख सकते हैं कि भगवान शुरुआत से देखे भगवान प्रकट हुए, बहुत सारे नरसिंह लीला किया, बराह लीला किया, बामन लीला किया इत्यादि, बहुत सारे लीलाओं को भगवान ने किया, भगवान ने बहुत सारे लीलाओं को कर दिए लेकिन कितने भक्त बने, उतने भक्त नहीं बने। यहां तक कि भगवान ने देखा कि फिर भी कोई भक्त नहीं बना इन सारे लीलाओं को करते हुए, तो उन्होंने क्या किया कि वापस ये सारे ज्ञान जो है अर्जुन को दे दिया कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में, गीता के रूप में प्रकट कर दिया। अभी सबके पास गीता भी आ गई, घर घर में गीता हो गया, लेकिन घर घर में गीता देखा भगवान ने कोई खोलता तक नहीं है गीता को। कभी कभी हम प्रवचन करने किधर जाते हैं घर में तो हम बोलते हैं कि गीता लेके आओ, तो बराबर गीता लेके आते एकदम सील पैक। तो हम पूछते हैं कि कभी आपने इस गीता को पढ़ा नहीं, बोला नहीं एकदम सार्थक हम कर रहे हैं एज इट इज, भगवद गीता एज इट इज देता है, एज इट इज रखे हुए हैं। तो भगवान ने दिया गीता को लेकिन घर में गीता बंदी पड़ गया, बंदी पड़ा रहा। घर में गीता बंद पड़ रहेगा। फिर भगवान ने देखा कि अभी इस गीता को लोगों को इस ज्ञान को प्रचार करना है, तो भगवान ने क्या किया, भक्त के रूप में, आज से 550 वर्ष पूर्व भगवान ने भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु भी कहां कहां प्रचार प्रसार किए, दक्षिण भारत में कुछ जगहों पे गए और बंगाल में प्रचार प्रसार किए, यहां तक सोच ले भारत में कुछ स्थानों पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया है कि नहीं। लेकिन धन्य है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने क्या किया कि 12 साल तक उन्होंने वृंदावन में रहकर एक ऐसा आइटम बम तैयार किया कि उस आइटम बम को उन्होंने ले जाके अमेरिका में फोड़ा और पूरा विश्व जो है भक्ति में डूब गया, कृष्ण प्रेम में पूरा विश्व डूब गया। ये है भक्तों की महिमा। भक्त लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि भगवान भी नहीं कर पाते हैं। भगवान ने इस प्रकार का बहुत सारे प्रयास किया, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने जो प्रयास करके दिखाया और चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम, उसको पूर्ण किया प्रभुपाद जी ने। आज पूरा विश्व जो है हरिनाम में डूब रहा है, भक्ति कर रहा है, लगा दिया सबको प्रभुपाद जी ने। तो ये जो कहने का तात्पर्य है कि जो बानर थे भगवान ने बहुत मदद किया था इन्होंने, भगवान ने उनको मक्खन खिलाया। हम वृंदावन जाते हैं तो हम उनको भगाते हैं, उनसे दूर भागते हैं, उनको कुछ खिला दिया करिए, खिला देना चाहिए कुछ। भगवान ने तो मक्खन खिलाया, कम से कम सिंह दाना कुछ ऐसा केला इत्यादि खिला देना चाहिए। अभी देखो ये नहीं खिलाते तो वो लोग क्या करते हैं, चश्मा लेते हैं, हाँ क्या करते हैं, फिर चप्पल लेके भाग जाते हैं, पर्स लेके भाग जाते हैं, है ना। अरे वो तो हमको सिखाते हैं, हमको इंगित करते हैं कि ब्रज वृंदावन धाम में आए, अपने अपने रियल आंखों से भगवान का दर्शन करो, ढक्कन लगा के दर्शन मत करो, ढक्कन लगा के दर्शन मत करो, इसलिए लेके भाग जाते हो, फिर चप्पल लेके भाग जाते हैं, चप्पल लेके भाग जाते इसलिए लेके भाग जाते। ऐसे ब्रज धाम में जहां पे भगवान ने इतनी अनेक लीलाएं किया, इतनी सुंदर सुंदर लीला किया, उस जगह पे आकर उस ब्रज भूमि वृंदावन धाम में तुम लोग चप्पल पहन के आते हो, पैदल आओ पैदल और इन लीलाओं का स्मरण कीर्तन करो, इसलिए चप्पल भी लेके भाग जाते हैं, पर्स लेके भाग जाते हैं। अब भाई पर्स क्यों लेके भागते हैं, पर्स इसलिए लेके भाग जाते हैं कि आप आध्यात्मिक जगत में आए, इस भौतिक संपत्ति को इधर क्यों लेके आए हो, इधर इसकी जरूरत नहीं है, यहां तो केवल कृष्ण प्रेम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल कृष्ण प्रेम है राधा। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया कि इन बंदरों को भी खिलाया। मैया कहती है गोपियों से कि गोपियां एक काम करो, माखन को घर में रखो ही मत, माखन को घर में मत रखो, समस्या ही दूर हो गया। घर में रखते हो इसलिए समस्या आता है, उसको पता है घर में है, तो एक काम करो माखन को घर में रखो ही मत। मैया ये भी हमने करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, अब क्या। तो बोलते हम जब माखन घर में उसको नहीं मिलता है, वो घर के अंदर आता है ना, माखन जब नहीं मिलता है तो क्या करता है, श्राप देता है, श्राप देता है, दरिद्रे वस्तो वस्मिन गृह, इस गृह में दरिद्रता छा जाए, जिस गृह में मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहे, वो दरिद्र हो जाओ तुम लोग, यहां तक कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां आगे चल के दरिद्रता को प्राप्त हो, इस प्रकार के श्राप देता है मैया। ये निर्दोष बालक इसका श्राप लग गया तो हम तो किधर के नहीं रहेंगी, इस प्रकार से हमने ये भी प्रयास करके देख लिया मैया, ये भी प्रयास करके देख लिया। तो मैया यशोदा कहती है, अंतिम बात कहते, एक काम करो तुम लोग, अभी अभी तुम लोग कुछ चिंता से मुक्त हो जाओगे, एक काम करो कि तुम लोग ये आता है ना, सामने से इसको मक्खन दे दिया करो, सामने से मक्खन दे दिया करो, और खाएगा और चला जाएगा, ये फोड़न फाड़न नहीं करेगा, नहीं वेस्ट नहीं करेगा, क्या करो सामने से दे दिया करो। तो गोपियां कहती मैया हमने ये भी करके देख लिया, उस हमको मालूम है कि 2:30 बजे आने वाला है, तो हम क्या करते हैं 2 बजे ही घर के बाहर आंगन में मटकी लेके बैठ जाते हैं, अभी आएगा तो उसको मक्खन देंगे है? तो जब ये आता है और हम उसको बोलते हैं कि अभी चलो उसको मक्खन देंगे हम, और हम जब देने जाते हैं तो तुरंत वो खड़ा हो जाता है, भिखारी समझाए क्या हमको भिखारी समझाए। तो इस प्रकार से भिखारी समझाया करके बात है, अरे मैं राजा का लड़का हूं, नंद महाराज का लड़का हूं, पूरे ब्रज के राजा का लड़का हूं मैं, हाँ हमको भिखारी समझाए, भिखारी समझाए हमको, हम फोकट का नहीं खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। अरे तुम कौन सा मेहनत कर रहा है पता है सबको फोकट के नहीं खाते, मेहनत करके। तुमको मालूम नहीं चोरी करने में कितना मेहनत होता है, कितनी बड़ी रिस्क है चोरी करने में, कितना बड़ा रिस्क है तुमको नहीं पता। हम फोकट का नहीं खाते हैं, हमको भिखारी नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारा माखन, चले जाता है। तो मैया इस प्रकार का बोलता है, हम तो ये भी करके देख लिए। कुल मिलाकर माँ ये तेरा जो लाला है ना, इसको चोरी का माल ही पसंद है। इसको चोरी का माल केवल पसंद है। इस प्रकार से मैया को ये सारे लोग गोपियां कंप्लेन कर रही हैं, सारा आइडिया लगाए लेकिन सब आइडिया फेल हो जाता था कृष्ण के पास। तब सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से इसके बाद का वर्णन भागवतम में करते हैं कि मैया ने देखा कि अभी ये गोपियां बहुत परेशान हैं, तो इनके परेशानी का कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। तो मैया ने क्या सोचा, उपाय निकाला कि देखो मैं अपने घर में, मेरे पास 9 लाख गायें हैं और इतना दूध दही माखन जो है वो क्या होता है, मैं अपने हाथों से नहीं बनाती हूं, क्योंकि मेरे घर में इतने दास दासियां, सब लोग मक्खन निकालते हैं, हाँ? सब लोग माखन बनाते हैं, दही निकालते हैं, दूध निकालते हैं, इत्यादि सब लोग काम करते हैं, नौकर चाकर करते हैं। लेकिन ये जो गोपियों के पास है क्यों जाता है, क्योंकि गोपियां स्वयं अपने हाथों से मक्खन निकालती हैं, इसलिए शायद मेरा जो लाला है इन नौकरों के हाथ से बना मक्खन पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है और भगवान तो भाव के भूखे रहते हैं, है ना, प्रेम के भूखे हैं भगवान, हाँ, प्रेम के भूखे है ना भगवान, तभी तो विदुर के पास गए 56 भोग को छोड़कर, प्रेम के भूखे है भगवान। इसलिए मैया यशोदा ने सोचा कि अभी क्या करूं, मैं स्वयं माखन को बनाती हूं, स्वयं माखन को बनाऊंगी, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तब मैया ने इस प्रकार से उपाय सूझा और उपाय निकाला कि मैं स्वयं माखन को मथूंगी और कृष्ण को माखन खिलाऊंगी। तो इस प्रकार से जैसे ही मैया ने विचार किया, सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 9वें अध्याय का प्रारंभ भी ऐसा करते हैं कि एकदा गृहदा शिशु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी। एक बार का एक दिन क्या हुआ कि मैया यशोदा नंद भवन में, नंद गेहिनी माता यशोदा क्या करने लगी, दीपावली का दिन था और उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को कर्मांतर नियुक्तासु, सभी जितने भी नौकर चाकर घर में थे सबको छुट्टी दे दिया। वैसे भी दीपावली का समय सबको छुट्टी दे ही देते हैं सेठ लोग, है कि नहीं, मैया ने सबको छुट्टी दे दिया। एक तो दीपावली का दिन था इसलिए छुट्टी दे दिया, और दूसरा लेकिन मन के अंदर क्या भाव था कि मैं स्वयं दधी मथूंगी और स्वयं मक्खन को निकालूंगी और कृष्ण को खिलाऊंगी, तब ये माखन चोरी करना छोड़ेगा। ये मन के अंदर भाव, और मैया ने क्या किया, निर्मंथ स्वयं दधी, मैया क्या करने लगी, दधी को मथने लगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह जल्दी उठकर माता क्या करने लगी, दही को मथना प्रारंभ किया। अभी दही को मथते मथते वो क्या कर रही थी, तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते कि यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च दधी निर्मंथरे काले स्मरंती तान्य गायत। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो दही को मथते मथते वो क्या कर रही है, यानी यानी गीतानी, वो गीत को गा रही है, किसके गीत को, तद बाल चरितानी चाहिए, उसके ही बालक, उसके ही कृष्ण को, अभी तक जितने भी लीलाएं किया है, जो सारे चीजों को उन्होंने देखा है, उसको गायन कर रही है, मुख से गायन करते हुए हाथ से सुंदर तरीके से मथनी को चला रही है। तो सुंदर तरीके से माता यशोदा कीर्तन कर रही है, काम करते करते कीर्तन कर रही है। वर्णन है कि जब माता इस दही को मथ रही थी, उस समय मथानी का जो आवाज था ना, घर घर, उसका वर्णन है कि वो मृदंग की तरह आवाज आ रहा था उसका, और मैया के हाथ में जितनी भी चूड़ियां थी ना, वो छन छन वो करताल का आवाज कर रही थी, बहुत सुंदर मृदंग और करताल भी बज रहा है, और मैया मुख से कीर्तन कर रही है और सुंदर तरीके से अपनी सेवा, अपनी दही को मथना उस ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ किया है माता ने, ब्रह्म मुहूर्त में। उस समय मैया ने बहुत सुसज्जित थी, माता के बाल में जो है ना फूल लगे हुए थे, फूलों का वेड़ी लगा हुआ था। उस समय वो फूल जो है ना, जब ही माता को देखा कि इस प्रकार से कर्मणा वाचा मनसा तीनों रूप से, मन से मुख से और कर्मणा तीनों रूप से मैया कृष्ण की सेवा में लगी हुई है, तो आध्यात्मिक, एक आचार्य कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में ना ये फूल और अत्यधिक हर एक चीज जो है आध्यात्मिक होता है। ते फूल जो माता यशोदा के सिर पे था,
वो भूल यह सोचने लगा कि मैया इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से भगवान की सेवा में लगी हुई है, तो ऐसे शुद्ध भक्त को के सिर के ऊपर मेरा स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों में मेरा स्थान होना चाहिए। इसलिए सारे फूल झड़कर माता के चरणों में गिरने लगे। इस प्रकार से सारे फूल जो है झड़कर माता के चरणों में गिरने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी कृष्ण का कोई कथा कीर्तन करता है तो कृष्ण वहां पे प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण को प्रकट करना है तो एकमात्र उपाय यही है कि उनका कथा और कीर्तन करिए, तभी कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। देखिए इसी लीला से हमको समझ में आ जाएगा कि जहां पे कृष्ण का कीर्तन होता है वहां पे स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। माता यशोदा कीर्तन करते हुए सुंदर तरीके से काम कर रही है, उस समय बालक कृष्ण जो है रूम में सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही कीर्तन करना मैया ने प्रारंभ किया वो बालक सोया हुआ था, कृष्ण सोए हुए थे लेकिन उठकर माता के पास आ गए। क्यों? क्योंकि मैया कीर्तन कर रही है। तो कीर्तन से जहां पे भगवान का कीर्तन होता है वहां पे भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। एक बार की घटना है कि नारद मुनि बैकुंठ लोक विचरण करते करते वो बैकुंठ लोक के पास गए, क्योंकि नारद मुनि के पास तो सब जगह का वीजा पासपोर्ट है, कहीं रोक ठोक है नहीं, उनको कभी किधर भी पहुंच सकते हैं। तो नारद मुनि कहां पे गए? बैकुंठ लोक भगवान के पास गए और भगवान को पूछते हैं कि प्रभु आप कहां रहते हो, प्रभु आप कहां रहते हो। नारद मुनि ऐसा पूछे और तुरंत सोचे कि प्रभु मैं ये क्या प्रश्न कर रहा हूं, तो बैकुंठ में हमेशा बैकुंठ में ही रहते होगे, मैं भी गलत प्रश्न कर लिया, आप बैकुंठ में हमेशा रहते होगे। तो उस समय भगवान बैकुंठ में नारद मुनि को कहते हैं, नारद मुनि मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं। स्वयं नारद मुनि इस बात को बताते हैं, अब स्वयं भगवान इस बात को बताते हैं नारद मुनि को कि नारद मुनि मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं। कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं नारद मुनि को कहते हैं कि नारद मुनि मैं बैकुंठ में नहीं निवास करता हूं, नाहं वसामि वैकुंठे मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो नारद मुनि कहते कि प्रभु तब तो आप निश्चित रूप से योगियों के हृदय में रहते होंगे, क्योंकि योगी लोग क्या करते हैं, दिन रात आपकी तपस्या करते रहते हैं, दिन रात योग साधना करते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर करते हैं, बड़ी बड़ी कठिन कठिन तपस्या करते हैं, सुबह से उठकर ब्रह्म मुहूर्त से उनका सारा क्रियाकलाप चालू हो जाता है, इतना इतना ध्यान करते हैं, कठोर श्रम करते हैं, प्रभु निश्चित रूप से आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। तो उस समय भगवान कहते कि हे नारद मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, योगी नाम हृदय सुना मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं। तब नारद मुनि कहते हैं प्रभु अब तो आप बता ही दीजिए आप किधर रहते हो, अब तो मैं लिख लेता हूं अच्छे से, आप बता दीजिए आप किधर रहते हो। तब भगवान स्वयं कहते हैं कि हे नारद मुनि यत्र गायन्ति मद भक्ता जहां पे मेरे भक्त मेरे नामों कीर्तन का कथा करते हैं मेरा गुणगान करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं नारद मुनि स्वयं वहां पे हमेशा उपस्थित रहता हूं। तो यहां पे आप लोग है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कृष्ण है ये मालूम है, क्योंकि जहां कृष्ण का नाम कीर्तन चलता है ना वहीं पे भगवान कृष्ण उपस्थित रहते हैं। यशोदा मैया ने क्या किया, नाम कीर्तन करते हुए सेवा को कर रही है और कृष्ण वहां पे जगकर उठकर माता के पास आ गए, और माता के पास आकर क्या करिए, तुरंत मथनी जो था माता का पकड़ लिया अभी, क्योंकि मां तो कीर्तन करते हुए मस्त थी। कभी कभी भक्त लोग होते हैं ना एकदम मदोमस्त हो जाते हैं, फिर सुधी बुधि खुल जाते हैं, किसी को बुलाना है तब तो बुलाने से काम नहीं चलता, उसको जाके पकड़ना पड़ता है। तो क्या किया कृष्ण ने, क्या किया मैया को पास गए, रोते हुए गए, क्योंकि बालक जब उठता है तो उसको भूख लगता है, तो रोते हुए मैया के पास गए, और लेकिन मैया सुनी नहीं क्योंकि वो तो धुन में थी पूरा। तो कृष्ण ने क्या किया, उस दधी जो मथ रही थी पकड़ लिया, तो रुक गया अचानक, तो मैया का नजर खुला। जय श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताय की। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने क्या किया, मैया के जो मथनी था उसको पकड़ लिया, और मथनी रुक गई तक मैया ने तुरंत देखा। तो कृष्ण मथनी को क्यों पकड़ लिया, क्योंकि मैया कीर्तन कर रही है कथा कर रही है, अभी कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैया बहुत हो गया, तुम्हारा जो ये प्रयास था साधना था ये पूर्ण हुआ, अभी तुम मेरे तरफ देखो, ये पूर्ण हुआ तुम्हारा, अब मेहनत मत करो। तो उन्होंने क्या किया, इच्छा व्यक्त किया, दूध पान करने की इच्छा व्यक्त किया। तुरंत ही माता यशोदा ने उनको क्या किया,
तुरंत गोद में उठाकर मैया उनको स्तनपान कराने लगी, दूध को पिलाने लगी। माता यशोदा दूध को पिलाने लगी। इस बात को ना भागवत में परीक्षित महाराज याद करते हुए उनके आंखों से अश्रु आ जाता है, आंखों से अश्रु आ जाता है। वो कहते कि यशोदा तू महाभागा, यशोदा ने कौन सा ऐसा कार्य किया था जो कि पूरे ब्रह्मांड के अधिपति उनके आज स्तनों को पान कर रहे हैं। परीक्षित महाराज रोते हुए याद कर रहे कि नंदम किम करोति ब्रह्मन, कि नंद महाराज ने ऐसा कौन सा कार्य किया था कि पूरे ब्रह्मांड के अधिपति उनके घर में उनके पुत्र के रूप में आए। तो इस प्रकार से सुंदर दृश्य, अभी मैया ने क्या किया, बालक को गोद में लिया और स्तन का पान कराने लगी। देखिए जब ही मैया ने बालक को कृष्ण को उठाया तो उस समय स्तन का पान कराने लगी, तो उस समय कृष्ण की एज कितनी थी, उस समय कृष्ण का जो एज था ना 3 साल 2 महीने के थे कृष्ण जब ये स्तन को पान करा रही थी मैया। तो यहां पे देखिए एक बहुत विचार करने वाली बात है, मैंने एक उत्तम कोटि के भक्त के मुख से सुना था और ये सत्य है कि मैया जब ही बालक को स्तन का पान करा रही थी कृष्ण का एज था 3 साल। मतलब पहले माताएं बच्चे को 3 साल तक दूध पिलाती थी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई कि माताएं 6 महीना 1 साल तक भी नहीं पिला पाती हैं और वो पिलाना भी नहीं चाहती है। ये बहुत बड़ा लोगों के मन में भ्रम बैठ चुका है कि स्तन का पान बच्चे को कराने से उनकी सुंदरता चली जाएगी, बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है संसार में। 3 साल तक ऐसे 3 साल की माताओं को ना पद्मिनी बोला गया शास्त्रों में, और 3 साल से कम जो 2 साल तक 1.5-2 साल तक पिलाती है उनको शास्त्रों में नाम दिया गया है, कामिनी का नाम दिया गया ऐसी माताओं को। लेकिन 1 साल के अंदर ऐसी कोई माताओं का नाम है ही नहीं शास्त्रों में, क्योंकि जब माता पुत्र को अपने गोद में लेकर स्तन का पान कराती है वही एक समय होता है कि बच्चे और मां के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है और एक रिलेशन क्रिएट होता है, जिस रिलेशन के कारण करोड़ों के बीच में वो अपनी मां को पहचानता है, करोड़ों के बीच में पहचानता है मां को, वो एक रिलेशन क्रिएट होता है उस मां और बच्चे के बीच में रिलेशन क्रिएट। लेकिन आजकल क्या होता है, माताएं जल्दी बच्चे को क्या करती है, बॉटल थमा देती है, बॉटल में दूध भरकर बॉटल थमा देती है। अभी देखिए वो भक्त बहुत सुंदर बात बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सही भी बात है। बॉटल पकड़ाते हैं बच्चे को, जन्म से बॉटल पकड़ा दिया, जब तक स्तन का पान कराना चाहिए तब तक कराया नहीं और जन्म से क्या किया, बॉटल को पकड़ा दिया। और जैसे ही बॉटल को पकड़ाया तो क्या किया, बच्चे ने बॉटल को पकड़ा, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो ए बॉटल को छोड़ के फिर दूसरा बॉटल पकड़ता है, कौन सा कवर, कोको कोला का बॉटल पकड़ता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो क्या होता है, बियर का बॉटल पकड़ता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो क्या करता है, बिस्की का बॉटल पकड़ता है। फिर ये पीते 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 रोगों से ग्रसित होता है और हॉस्पिटल में बॉटल को देखते देखते हरी बोल हो जाता है कि नहीं। जन्म से बॉटल पकड़ाया और बच्चे ने जन्म से बॉटल पकड़ाया और मरते दम तक बॉटल का साथ निभाया। इसलिए बॉटल कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए, कम से कम चम्मच से दूध पिलाओ, चमचा बनेगा वो ठीक है। बॉटल से नहीं पिलाना चाहिए। और ऐसी माताएं हक से बोला करती थी कि बेटा मेरे दूध का लाज रखना तुम, बेटा मेरे दूध का लाज, ऐसी माताएं में दम होता, ये बोलती थी माताएं, क्योंकि उन्होंने सही रूप में स्तन का पान बच्चे को कराया है। आज अगर बेटा आकर बोले मां मैं तेरे दूध का कर्ज उतारूंगा तो मां यही बोलते कि बेटा दूध वाले का कर्ज उतार पहले, बाद में मेरा उतारना, क्योंकि पैकेट का दूध पिया है तूने। तो बहुत सुंदर दृश्य ये, माता अभी बालक को गोद में लेकर कृष्ण को स्तन का पान करा रही है। और अभी क्या हुआ, 2 प्रसन्न, बच्चा भी प्रसन्न मैया भी प्रसन्न, बहुत सुंदर सा दृश्य है, दोनों प्रसन्न है, दोनों प्रसन्न है, परम प्रसन्न है। लेकिन हुआ क्या, जब 2 प्रसन्न रहते तो 3रा जलना शुरू करता है। 2 प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता को देखकर 3रा जलना शुरू करता है। अभी क्या हुआ, उस समय मैया जब दधी मत रही थी ना, उस समय क्या एक और कार्य की थी, किचन में जो है ना चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था, पद्मगंधा गाय का दूध रखा हुआ था, वो उबल रहा था। तभी एक गाय, क्योंकि मैंने अभी वर्णन किया, आचार्यगण क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु चेतन होती है, अभी वो दूध वहां पे जल रहा है। क्यों जल रहा है,
अभी उबलने लगा, उफान मारने लगा, जलते हो, क्या देख रहा है कि अभी मैया ने क्या किया, बच्चे को उठा लिया, अभी स्तन पान करा रहे, अभी कृष्ण इतने परम प्रसन्न है, वो तो संतुष्ट हो जाने वाले हैं, और मेरा जो जीवन है वो कृष्ण के लिए है, लेकिन अब तो कृष्ण मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अपने जीवन को त्यागने लगा और आत्महत्या करने लगा। जीवन जो है कृष्ण के लिए है। वो दूध ने भी देखा कि मेरा अब पान नहीं करेंगे, तो उसने भी क्या किया, अपने आप को जलाने लगा। वास्तव में रामायण में यह वर्णन है कि जो व्यक्ति, अगर हमारी संपत्ति, घर परिवार, वह घर परिवार संपत्ति अगर हमारे भक्ति में अगर बाधा देता है ना, तो उस संपत्ति को जला देना चाहिए जो कृष्ण की भक्ति करने में बाधा देता है। रामायण में बहुत सुंदर एक प्रसंग है, वर्णन है। तो इस प्रकार से मैया ने, माता ने क्या किया, दूध बचाने चली गई। क्या किया, तुरंत अभी बालक पी रहा है, अभी देखिए बालक दूध पी रहा है, दोनों परम प्रसन्न थे, अब तक दोनों प्रसन्न है, लेकिन जैसे ही मैया ने क्या सोचा, इसको बाद में स्तनपान करा दूं कि पहले दूध बचाऊं, तो मैया क्या करके भाग के दूध बचाने गई, और जैसे ही मैया दूध बचाने गई, कृष्ण को नीचे रखा, कृष्ण को नीचे जैसे ही रखा, और जैसे ही कृष्ण को छोड़ा, और देखिए बड़ी समस्याएं शुरू हो गई। जब तक दोनों साथ में थे, कृष्ण जब तक साथ में थे, तब तक माता को कोई समस्या नहीं था, एकदम परम प्रसन्न थी माता, और जैसे ही कृष्ण को छोड़ा, अब देखिए क्या होता है, गई दूध बचाने के लिए, यहां पे कृष्ण को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया कृष्ण को। वह कृष्ण जो कि भगवद गीता में कहते हैं कि काम क्रोध लोभ, ये जो है नरक का द्वार है, अगर कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, कामना होता है उसके अंदर, तो उसको नरक को लेके जाने वाला है। लेकिन आज वही कृष्ण के अंदर क्रोध आया। देखिए ये तीनों काम क्रोध लोभ सब कृष्ण के अंदर आया इस लीला में। पहले कामना हुआ, उठ के आए, माता का दूध पीने की कामना हुआ, आके दूध का पान करने लगे, और दूध को पान करते करते और लोभ हुआ उनको, और पीना है, और मैया ने उनको नीचे रख दिया, तो क्रोध आ गया, और क्रोधावश फिर तुरंत ही भगवान ने क्या किया, उस मटकी को फोड़ दिया, जिस मटकी में दही रख के और कई घंटों तक उसने मेहनत किया था, अब तो मक्खन ऊपर भी आ चुका था, और उसको बहुत एक पत्थर उठाया और उसको फोड़ दिया। माता यशोदा वहां से तुरंत आई, जब भी इस दूध को बचाकर, तब तो देखा दृश्य। अभी इधर क्या हुआ था, फोड़े तो फोड़े, जब बह गया सब निकल के बहने लगा, तो डर गए एकदम, अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत तेजी से बहने लगा, छोटा मोटा मटका तो था नहीं, एक दो लीटर का, वो तो बड़ा था और भरा हुआ था पूरा, और बहने लगा, देखी तो ये तो बह रहा है, तो तुरंत डर गया बालक, छोटे से बालक थे कृष्ण, डर गए तुरंत, और डर कर सोचे अब कहां भागू। वो भगवान जिन्होंने दो पग में पूरे ब्रह्मांड को माप लिया, आज वो सोच रहे हैं उस आंगन में कि कहां भागू। लेकिन भाग कर गए, उखल के ऊपर बैठ गए। अभी यहां पर मैया जब आई तो देखा, तो एक क्षण के लिए मैया बहुत प्रसन्न हुई, एक क्षण के लिए केवल। मैया क्यों प्रसन्न हुई, कि उसने देखा कि कृष्ण के अंदर बल आ गया, क्योंकि पत्थर को उठाकर मटकी तोड़ा, और बुद्धि भी आ गया। बुद्धि कैसे आया भाई, बुद्धि इसलिए ऐसा आया कि ये पत्थर को उठाकर ऊपर भी तोड़ सकता था, लेकिन बराबर नीचे तोड़ा ताकि सब गिर जाए। तो एक क्षण के लिए माता खुश हुई कि मेरे बालक के अंदर बुद्धि भी आ गया है, बल भी आ गया है, लेकिन तुरंत ही दूसरे क्षण ये कंफर्म हो गई कि गोपियां जो शिकायत लेके आती थी ये सही था। मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज यशोदा मैया कंफर्म हो गई कि ये सही था कि गोपियां जो कंप्लेन कर रही थी ये सच में जाके तोड़न फोड़न करता है। तब माता ने क्या किया, तुरंत ही छड़ी को उठाया, आज तो मैं इसको बांधूंगी, आज इसको बांधूंगी, और तुरंत ही उन्होंने छड़ी को पकड़ा और जाके दौड़ाते दौड़ाते और कृष्ण को क्या किया, पकड़ के और बांध दिया। उधर सामने दिख रहे ना, उखल के सामने बंधे हुए, बांध दिया। अभी क्या हुआ, इस दृश्य को सत्यव्रत मुनि ने देखा, और देखकर उन्होंने अष्टकम की रचना कर दिया। सत्यव्रत मुनि ने अष्टकम की रचना किया, जिसको हम रोज गाते हैं। तो आइए उस अष्टकम का आज एक एक श्लोक के ऊपर थोड़ा सा हम संक्षिप्त में देखते हैं। पहला श्लोक ही,
नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम లసత్ కుండలం గోకులే వ్రాజమానం
నమామేశ్వరం చచ్చిదానంద రూపం
లసత్ కుండలం గోకులే వ్రాజమానం యశోదాభియో లోకలాదవమానం పరామిష్టమత్యంతతో ధృతగోప్యా
యశోదాభియో లోకలాదవమానం
పరామిష్టమత్యంతతో యశోదాభియో లోకలాదవమానం పరామిష్టమత్యంతతో ధృతగోప్యా
యశోదాభియో లోకలాదవమానం పరామిష్టమత్యంతతో ధృతగోప్యా.
तो इस प्रकार इस दृश्य को जैसे ही सत्यव्रत मुनि ने देखा तो तुरंत ही उन्होंने ये अष्टकम की रचना किया. इस अष्टकम के ऊपर सनातन गोस्वामी पाद का बहुत सी सुंदर भाव, बहुत सी सुंदर टीका है. तो सबसे पहले सत्यव्रत मुनि इस श्लोक में, इस अष्टकम का पहला जो श्लोक है, इसमें क्या कहते हैं, नमामि. नमामि सबसे पहला शब्द वो नमामि कहते हैं, मतलब प्रणाम करते हैं भगवान को. देखिए यहां पर सत्यव्रत मुनि ना सतर्क कर रहे हैं. क्या सतर्क दिखा, हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमको कोई भी कार्य करने से पहले, इस संसार का कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य करने से पहले सबसे पहले हमको नमन करना चाहिए. नमामि शब्द का यह अर्थ है कि नमन करना चाहिए. अभी ये सत्यव्रत मुनि जो अष्टकम की रचना करने जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं भगवान को, प्रणाम कर रहे हैं. देखिए इस भजन की शुरुआत हो, महीने का शुरुआत हो, साल का शुरुआत हो, दिन का शुरुआत हो, यह हमको शिक्षा मिल रहा है कि हमको कार्य दिन का शुरुआत, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, नमन करना चाहिए, प्रणाम करके प्रारंभ करना चाहिए. इस प्रकार से यह शिक्षा हमको प्राप्त होता है. श्रीमद् भागवत के अंतिम में भागवत, पूरी भागवत का जो कंक्लूजन है, जो सार के रूप में अंतिम श्लोक में प्रस्तुत किया गया है, पूरे सार के रूप में अंतिम श्लोक का, जैसे गीता का सार अंतिम श्लोक में क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानि तिर्ममा. जहां पे कृष्ण है, योगेश्वर भगवान अर्जुन है, जहां पे योगेश्वर कृष्ण है वहां पे परम विजय है, वहां पे ही जीत है ना. ऐसे ही भागवत का कंक्लूजन भागवत के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी करते हैं. कहते हैं नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरम. पूरी भागवत को पढ़कर कुछ कार्य किया या न किया, लेकिन दो बातों को ध्यान में रखिए. अंतिम कंक्लूजन, दो बातों को ध्यान में रखिए, दो कार्य करना मत कभी छोड़िएगा. वह क्या है, एक तो है कि भगवान का नाम लेना और दूसरा है कि भगवान को प्रणाम करना. तम नमामि हरिपरम, नमामि शब्द की वाक्य, बिना प्रणाम करके और बिना भगवत नाम लिए अपने कोई दिनचर्या को शुरू ही नहीं करना चाहिए हमको. नमामि शब्द सत्यव्रत मुनि ये बता रहे हैं कि प्रणाम करके ही हमको कोई कार्य करना चाहिए. गोपियां ये प्रणाम में देखिए इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि वह कार्य जो है संपूर्णता अच्छे अच्छे से संपन्न हो जाता है. इतनी शक्ति इस प्रणाम में. गोपियां इस बात को गोपी गीत में कहती है कि हे प्रभु, हम जानते हैं आपको प्रणाम करने से क्या क्या होता है, हम जानते हैं इसको. गोपियां कहती है गोपी गीत में, कहती है प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम. हे प्रभु, आपका जो ये प्रणत देही नाम, ये देहधारी जो जीव है ना, इसके अंदर हजारों हजारों कलमस, हजारों हजारों पाप, कितने जन्म जन्म के इसके अंदर पड़े हुए हैं ये देहधारी जीवात्मा के अंदर. प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, लेकिन आपका नाम और आपको प्रणाम करने मात्र से इसके अंदर हजारों हजारों सालों के, हजारों हजारों जन्म के इसके अंदर जो पाप है वो यूं नष्ट हो जाता है प्रणाम करने मात्र से. तो इस प्रणाम में जो है ना बहुत शक्ति है. सत्यव्रत मुनि रचना करने से पहले प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, नमामि. आप याद करिए उस प्रसंग को, रामायण का यह प्रसंग है कि उस समय की बात है, भगवान रामचंद्र समुद्र को पार कर चुके हैं, समुद्र में सेतु बना के पार कर चुके हैं. लेकिन पार करते ही संध्या समय हुआ तो वहां पे ही कैंप वगैरह वहां पे लगाकर रात्रि निवास करने का वहीं पे सोचा, समुद्र के किनारे ही. उस समय हुआ क्या, लंका से विभीषण को रावण ने लात मार के भगा दिया, क्योंकि विभीषण जो था भगवान का भक्त था और बार बार वो सचेत करता था रावण को कि तुम छोड़ दो सीता को, नहीं तो थोड़ा तेरा नाश हो जाएगा। लेकिन नहीं माने विभीषण, रावण नहीं माना, और विभीषण कंटिन्यू अच्छे अच्छे सलाह देते रहते थे, इसलिए क्या किया, रावण ने लात मार के विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया। उस समय विभीषण प्रभु रामचंद्र का शरण लेने के लिए उस जगह से, लंका से अभी ये समुद्र के किनारे जहां पे भगवान अभी हैं पहुंचे हैं, वहां पे निकले। और उस समय रात्रि का समय था, और भगवान रामचंद्र के छावनी के आसपास कितने सारे सैनिक इत्यादि सब लोग क्या कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, क्योंकि अभी दुश्मन के इलाके में पहुंच चुके हैं हम, इसलिए रात्रि को पहरा दे रहे थे। और उनके रामचंद्र के अनुचरों ने देखा कि एक राक्षस जो है लंका से निकल के अभी आ रहा है हमारा भेद जानने के लिए, हमारा भेद जानने के लिए एक राक्षस लंका से निकल के आ रहा है। तो तुरंत ही वो अनुचर भाग कर गए छावनी में, और हनुमान जी को, जामवन जी को इत्यादि सबको बताया कि एक राक्षस निकल के आ रहा है, अगर आप लोग की याज्ञा हो तो उस राक्षस को उधर ही मार देते हैं। तो हनुमान जी, जामवन जी भगवान के पास गए और भगवान से बोले कि इस प्रकार का एक राक्षस आ रहा है, प्रभु आपकी अगर आज्ञा हो तो हम उसको मार देते हैं वहीं पे। तो प्रभु रामचंद्र ने बोला, क्योंकि वो मेरे पास आ रहा है, मेरे इधर आ रहा है, मेरी छावनी में आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, इसलिए उसको मत मारो, आने दो, किसी भी भाव से आ रहा हो, किसी भी भाव से आ रहा है, उसको आने दो, मारने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे क्या करना है। तो उस समय विभीषण जब आए, जब प्रभु राम के पास आए, तुरंत ही विभीषण ने क्या किया, भगवान को प्रणाम कर दिया, तुरंत भगवान के चरणों में सरेंडर हो गए, प्रणाम किया। और उस समय प्रभु रामचंद्र, विभीषण जैसे ही प्रणाम किए, प्रभु रामचंद्र ने उनको अपने हाथों से पकड़कर उठाते हुए कहा कि उठो लंकेश, उठो, सोचिए, उठो लंकेश, सोचिए कि जो लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने घोर तपस्या किया, अपने मस्तक को काटकर शिव जी को अर्पण कर दिया और शिव जी प्रसन्न हुए, उसके बाद उसको लंका की प्राप्ति हुई। उस जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने घोर इतनी घतिन तपस्या किया था, लेकिन उस लंका को प्राप्त करने के लिए विभीषण ने मात्र एक प्रणाम कर दिया और वो लंका उसको प्राप्त हो गई। अभी क्या हुआ कि हनुमान जी, जामवंत सब लोग बड़े टेंशन में हो गए, सब लोग टेंशन में, प्रभु आपने क्या बोला, अभी तक तो हमने युद्ध किया भी नहीं रावण से, कहीं युद्ध करते करते हम हार गए तो, प्रभु अभी तक तो हमने युद्ध जीता भी नहीं, आप एडवांस में उसको लंका का राजा बना दिया। डर, ये भय अपना व्यक्त किया प्रभु के सामने हनुमान जी। तो प्रभु ने बोला, रामचंद्र ने बोला, प्रभु हे हनुमान, जामवंत जी देखो, एक मेरी शरण में आ गया, मैं इसको लंका का राजा तो बना दिया, मान लो आप कह रहे युद्ध करते करते हम हार भी गए, हार गए तो कोई बात नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चला जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा, आप चिंता मत करो, अगर लंका का राजा इसको नहीं बना पाया तो मैं अपने अयोध्या का राजा इसको बनाऊंगा, लेकिन राजा जरूर बनाऊंगा केवल प्रणाम करने मात्र से, क्योंकि एक बार कोई अगर भगवान को प्रणाम कर देता है तो भगवान उसको कभी भी छोड़ते नहीं। उसी वनवास काल में भगवान के चरण में ना बहुत सारे कांटे चुभते थे, अंदर चले जाते थे, और लक्ष्मण रात को कांटों को निकालते थे बाहर, लेकिन वो कांटे निकलते नहीं थे, परेशान हो गए, मैया के पास, सीता के पास गए कि माता ये क्या हो रहा है, कांटे बाहर नहीं निकल रहे, आप प्रयास करो कहीं आपसे निकल जाए, लेकिन फिर भी वो कांटे बाहर नहीं निकल रहे। और भगवान राम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को भी और सीता को भी कह रहे हैं कि तुम लोग फोकट का परेशान मत हो इतना, ये मेरा शरण ले लिया है इसलिए मैं कभी भी इसको त्यागूंगा नहीं, उन कांटों को भी भगवान ने त्यागा नहीं। ये है भगवान की कृपालुता का महिमा, उनको एक बार प्रणाम कोई, उनके शरणागत कोई चला गया तो कभी भी उसका त्याग नहीं करते हैं। देखिए नमस्कार, ये जो नमामि शब्द है, नमस्कार और प्रणाम में करने से ना, प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। आप उस समय याद करिए, उस समय का दृश्य महाभारत का, उस कुरुक्षेत्र का दृश्य, कि दोनों सेना पांडव और कौरव दोनों आमने सामने खड़े हैं, है कि नहीं। उस समय क्या हुआ कि अभी ये जो कौरवों की सेना थी ना, ये तिमंगल के समान थी, इतनी बड़ी सेना थी ये दुर्योधन का, कि उसके आगे पांडवों की सेना कुछ भी नहीं है। क्या है इनके में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े महारथी, कर्ण इत्यादि बड़े बड़े लोग वीर पड़े थे इधर ही कौरवों की सेना में, लेकिन पांडवों की सेना में ऐसे कोई वीर योद्धा नहीं था। लेकिन जब युद्ध प्रारंभ होने से पहले क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज अपने रथ को छोड़कर नीचे उतरे और पांडव भी साथ साथ में, अभी भाई उतरे तो पांडव भी उतर गए और साथ में उतरकर पितामह भीष्म के पास जाते हैं और पितामह भीष्म के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं कि हे पितामह, आज तक हम आपकी गोद में खेले, आपके प्रेम को प्राप्त किया, लेकिन आज देखिए समय की गणना कैसी है कि ऐसी स्थिति आ गया कि आज हम आपको, आपसे युद्ध करने का नौबत आ चुका है, तो प्रणाम करते कृपया हमको आशीर्वाद दीजिए। तो उस समय जैसे ही प्रणाम किए और पितामह भीष्म क्या बोले, विजयी भवा। द्रोणाचार्य के पास गए, गुरु द्रोणाचार्य भी ने आशीर्वाद दिया, विजयी भवा। अभी देखो रथ से उतर के जब ये पांडव आ रहे थे ना, दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो रहा था, बहुत प्रसन्न हो रहा था, क्या सोच रहा था कि ये लोग अभी अभी से सरेंडर करने आ रहे हैं, लेकिन जब ही प्रणाम किया इन लोग को और इन लोगों ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया तब तो वो तड़पड़ाने लगा, ये क्या मेरे पक्ष में रहकर विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। दुर्योधन रथ से नीचे तक नहीं उतरा, अगर वो भी चाहता अगर तो प्रणाम करके विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता था, लेकिन नहीं उतरा, नहीं उतरा दुर्योधन। और ये लोग प्रणाम किए और नतीजा यही निकला, प्रणाम करने से परिणाम चेंज हुआ, जो कौरव इतने बड़े बड़े योद्धाशाली थे और पांडवों ने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। तो ये प्रणाम करने से शक्ति है। सनातन गोस्वामी पाद इसके ऊपर जो टीका लिखा इस अष्टकम के ऊपर, वही सनातन गोस्वामी पाद ब्रज धाम वृंदावन में डेली भगवान को, डेली का रूटीन था, वो 1000 बार प्रणाम करते थे भगवान को, सनातन गोस्वामी पाद 1000 बार प्रणाम करते थे। उनकी लीला कथा सुनेंगे तो दिव्य है सनातन गोस्वामी पाद का। तो इस प्रकार से देखिए सनातन गोस्वामी पाद बहुत सुंदर से एक बात बताते हैं कि ये जो मंगलाचरण करके ना, मंगलाचरण पहले प्रारंभ करते हैं सत्यव्रत मुनि, तो मंगलाचरण करके उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे मंगलाचरण करके कि कोई भी कार्य करने से पहले हमको मंगलाचरण करना चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण करने से वो कार्य सिद्ध होता है, वो संपन्न होता है अच्छे से, उसमें कोई कोई बाधा नहीं आता है उसके अंदर। जैसे कि देखिए हम किसी यात्रा पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हो तो क्या होता है, सब लोग बोलते हैं यात्रा मंगलमय हो। मान लीजिए आप मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से, स्टेशन पे गए तो स्टेशन पे भी अनाउंस होता रहता है कि मुंबई से दिल्ली जाने की ट्रेन इस टाइम पे निकल रही है, आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो, है कि नहीं। यात्रा पे निकले तो शुभ और मंगलमय यात्रा हो। लेकिन मेरा प्रश्न एक है कि यात्रा मंगलमय कब होता है। देखिए यात्रा मंगलमय तभी होता है, तीन समय में होता है, कि एक तो ट्रेन में बैठे तो ट्रेन सही स्थान पे हमको पहुंचा दे, दिल्ली पहुंचा दे, लेकिन कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है वो डाइवर्ट होकर कहीं और भी छोड़ दे। लेकिन सही सिद्ध कब होता है, मंगलमय यात्रा कब होता है, जब वो सही स्थान पे पहुंचा दे। और दूसरी बात, टाइम टू टाइम पहुंचाए, टाइम से निकले और टाइम से पहुंचाए, 12 घंटा लेट हुआ तो फिर वो मंगलमय थोड़ी ना हुआ, टाइम टू टाइम पहुंचाए। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि यात्रा के दौरान कोई भी विपत्ति, कोई संकट ना आए, ये तीन बात होता है तभी यात्रा मंगलमय होती है। पहला सही जगह पे हमको पहुंचाए, दूसरा टाइम टू टाइम पहुंचाए, और तीसरा उस यात्रा के बीच में कोई भी कष्ट ना हो, समझ गए ना। तो उसी प्रकार ये हमारा जो जीवन है यह भी एक यात्रा के समान है, ये भी एक यात्रा के समान है, तभी तो हम करते रहते हैं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आत्म अन्वेषण की यात्रा करते हैं हम। तो ये जीवन भी हमारा एक यात्रा के समान है, ये जो 84 लाख यूनिया में हम घूमते घूमते इस स्थान पर प्राप्त हुए, 84 लाख यूनिया और कुछ नहीं, ये सारे स्टेशन है। और ये जो मनुष्य जीवन है, प्रभुपाद जी बताते हैं मनुष्य जीवन जो है ना एक जंक्शन के समान है, अभी ये जंक्शन पे हम खड़े हैं, हमारे पास अभी हमारे पास ये विचार होना चाहिए, हम सोच सकते हैं ऐसा कि अभी हमको कौन से योनि में जाना है, ये जंक्शन के समान है। हम यहां पे जो डिसीजन लिए, सही डिसीजन लिए तो सही डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, गलत डिसीजन लिए तो गलत डेस्टिनेशन चले जाएंगे, 84 लाख यूनियन में वापस चले जाएंगे। तो जैसे कि वो ट्रेन मंगलमय तभी यात्रा हो सकता है क्योंकि वो सही डेस्टिनेशन पर पहुंचा रही है, उसी प्रकार ये हमारा मनुष्य जीवन तभी हो सफल हो सकता है जो इसका डेस्टिनेशन क्या है, भगवान का धाम, उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी तो ये सफल हो सकता है ये मनुष्य जीवन, है ना। और दूसरा टाइम टू टाइम पहुंचाए, दूसरी बात है टाइम टू टाइम, तो ये जन्म में भक्ति करके हमको इतना तीव्र करना चाहिए कि टाइम से हम पहुंचे, ऐसा नहीं कि टाइम के 20 जन्म के बाद पहुंचे, टाइम इसी जन्म में सही भक्ति करके टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और तीसरी बात क्या है कि इसमें कोई कष्ट ना आए, है ना, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में बहुत सारे क्लेश कष्ट ये सब जो हमको बाधा बनती है वो ना आए। तो सही स्थान पे भगवत धाम प्राप्त करना है और टाइम से प्राप्त करना है और कोई कष्ट ना आए तो ये नमामि हम मंगलाचरण करेंगे, हर एक कार्य करने से पहले नमामि भगवान को प्रणाम करेंगे तो ये तीनों चीजें सिद्ध हो जाएगा मनुष्य जीवन का। तो इस प्रकार से जीवन जो है, यात्रा जो है मंगलमय है और हमको प्रणाम करना चाहिए। अभी प्रश्न उठता किसको प्रणाम, किसको प्रणाम करना चाहिए, है ना, ये बहुत बड़ी बात है, किसको प्रणाम करना। नमामि तो बोल दिए प्रणाम करना चाहिए, लेकिन किसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि संसार में व्यक्ति हजाम के सामने जाकर मुंडी नीचे करता है, काटो है? तो प्रणाम किसके पास करना चाहिए, तो कहते हैं कि ईश्वर, नमामि ईश्वर, ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। ये क्लियर करते हैं, पहले ही बता देते हैं कि भगवान जिसकी कथा हम करने जा रहे हैं, अष्टकम जिसके बारे में लिखने जा रहे हैं ना, वो कौन है, ईश्वर है, क्योंकि आगे चल के वो रोएंगे भी और बधेंगे भी, मोहित मत होना, क्योंकि वो ईश्वर है, उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। तो ईश्वर कैसा है, तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपम। नमा हट गया। मुझे प्रभुपाद जी का एक घटना याद आ गया। प्रभुपाद जी एक विदेश के मंदिर में गए और प्रणाम किया, डीटी को प्रणाम करके, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, सुंदर सा प्रणाम करके जब उठे तो देखे जगन्नाथ जी गायब, गौर निताय। प्रभुपाद जी सोचने लगे अभी मैंने प्रणाम किया जगन्नाथ जी को है? अभी उठ के देख रहा तो गौर निताय, तो प्रभुपाद सोचे कि मैं गौर निताय को किया कि जगन्नाथ जी को किया, बुलाए किसी को, मैंने अभी यहाँ पे जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, गौर निताय आ गए, तो बोले प्रभुपाद जी हमने घूमने वाला अल्टर बनाया है। तो सच्चिदानंद रूप, सच्चिद आनंद भगवान क्यों बताते, वो भगवान जो कि सच्चिदानंद है, वो परम आनंदित होते हैं, परम आनंदमय है, उनकी सारी इंद्रिया, हर एक इंद्रियों का कार्य करती है, वो सच्चिदानंद विग्रह भगवान, उनका वर्णन करते हैं, और वो आनंद के घनीभूत स्वरूप है। राधा गोविंद महाराज एक बहुत सुंदर बात को बताते हैं भगवान के इस सच्चिदानंद के ऊपर, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है इसकी, इस सच्चिदानंद के ऊपर बताते हैं कि संसार का सारे आनंद को, सारे सुख को इकट्ठा करो और एक फ्रिज में, उसके डीपर में, फ्रिज में डीपर में डाल दो सारे आनंद को, और सुबह उठकर वो क्या होगा, बर्फ बन जाएगा, उसको निकालो और वही है भगवान, पूरे आनंद के घनीभूत स्वरूप है भगवान। और कहते हैं कि अगर सुख को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना है, तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की शरण ग्रहण करो, तब सुखी हो जाओगे, आनंद की प्राप्ति कर पाओगे। और इसी को वेद व्यास जी भागवत का जब प्रारंभ करते हैं ना, समय हो गया ना, 5 मिनट और, चलिए, भागवत का जब प्रारंभ करते हैं तो वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हुए भगवान को इसी बात को कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि हेतवे, और उनका गुण क्या है, तापत्रय विनाशाय, अगर हमको प्रणाम करते हैं तो स्त्री ताप से अधि भौतिक, अधि दैविक, अधि आध्यात्मिक, ये जो संसार के 3 ताप हमको तड़पा रहे ना, उनको प्रणाम करने मात्र से भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान का ये जो सच्चिदानंद रूप है, अगर हम इसको याद करते हो, आगे सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम, सुंदर कुंडल है, कुंडल सुशोभित हो रहा है, कहते हैं कृष्ण के कानों में जो कुंडल है वो सुशोभित हो रहा है, कितनी महत्वपूर्ण बात है, कुंडल सुशोभित हो रहा है, हम आभूषण पहनते तो हम सुशोभित होते हैं, लेकिन आभूषण कृष्ण के कान में तो कुंडल सुशोभित हो रहा है, लसत कुंडलम है, बताइए वो कुंडल में क्या है, वो निर्जीव प्राणी है, लेकिन कृष्ण अगर धारण किए तो निर्जीव भी परम सुंदर दिखने लगता है, इसलिए लसत कुंडलम कहते हैं। इसी प्रकार हम भी किसी काम के नहीं है, लेकिन हम जैसे ही हमारा संपर्क हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं, उसी दिन हम परम सुंदर दिखने लगते हैं और महिमा मंडित हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण को जोड़ देना चाहिए, कृष्ण को जोड़ देना चाहिए जीवन में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जो नट बोल्ट पड़ा हुआ है, नट बोल्ट है ना, रास्ते पे गिरा हुआ, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही नट बोल्ट किसी फ्लाइट के अंदर लग जाए ना, उसका वैल्यू करोड़ों का हो जाता है। हमारा जीवन जो कि 0 है, 0 के समान है, लेकिन उस 0 के आगे अगर 1 जोड़ दो, तो वही एक जोड़ने से वो अरबों खरबों लाखों अरबों हो जाता है, अगर कृष्ण को जोड़ दे तो हमारे जीवन में। और जब हम कृष्ण को हमारे जीवन में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से परम आनंद की प्राप्ति होगी, और आगे चल के मैया ने किस प्रकार से उनको बाधा, और निश्चित रूप से अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैया ने बंधन में बांध लिया, उसी प्रकार हमारे जो जीवन का उद्देश्य कृष्ण को बांधना, हम भी बांध पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोदा दामोदर की जय, दामोदर लीला की, शील प्रभुपाद की, आप सभी भक्तों की जय। क्षमा करिएगा, पांच दस दस मिनट ले, पांच मिनट लेट हुआ ना, ढाई बजे तक रहता है ना। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो सभी अभी लाइन से बैठेंगे और प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हम लोग तीन बार प्रभु जी ने अपना टाइम निकाल के इस्कॉन वापिस से आए हैं। इस्कॉन वापिस के मैनेजर हैं प्रभु जी, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनाने वाले हैं और बहुत लोगों को गुजरात में प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा भगवत संदेश। अभी प्रभु जी ने कथा भी चालू की है, सब जगह घूम घूम के कथा भी कर रहे हैं। तो अभी किनको भी अगर कथा करानी है अपने गाँव में या कहीं भी, तो प्रभु जी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और प्रभु जी का हम रमय प्राण प्रभु जी का, हिज ग्रेस रमय प्राण प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हुए हम तीन बार हरी बोल बोलेंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। और हम विनती करेंगे प्रभु जी से कि हफ्ते में, मतलब महीने में एक बार तो प्रभु जी संडे में आए और अपना अपने मुखारविंद से इतनी सुंदर कथा का लाभ दें। और हम प्रभु जी का बहुत आभारी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये कोई बच्चा खो गया है, प्लीज प्लीज अपने बच्चे को आके लेके जाएं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रतीक नाम है इसका, प्रतीक। बच्चे का नाम प्रतीक है। इनके माताजी पिताजी जहां भी हो प्लीज बच्चे के पास आए, बच्चे को लेके जाएं, नहीं तो